क्योंकि रिजल्ट एक जैसा कैसे हो सकता है? ये तो शास्त्रों में लिखा भी नहीं हुआ है कि आप किसी और देवता को भगवान मानकर उसकी पूजा करो। शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी ये ना वैदिक कर्म कांड, उसमें लिखा हुआ है कि यदि आपको ये चाहिए तो आप ये करो, ये चाहिए तो। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि वो सब भगवान है, देवता लिखा हुआ है। देखो, देवता और भगवान के अंदर आपको फर्क पता होना चाहिए। भगवान की पूजा का जो रिजल्ट है वो देवता की पूजा करने से नहीं मिलेगा, तो फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दोनों का फल एक सा ही होगा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वे सोचते हैं कि कोई भी किसी ईश्वर की, किसी की भी ईश्वर की तरह पूजा कर सकता है और फल एक सा होगा। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की स्पष्ट सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुणी हैं वो अंधकार में हैं, वे प्रेतों की और जिनों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। भूत मैं देखती हूँ ऐसा हमारे लोगों में, कितने लोग होते हैं। मैं कभी से बोलती हूँ आप लोग ऐसे क्यों करते हो, मतलब इतनी श्रद्धा होती है उस कब्र के ऊपर, जो मजारों पे जाते हैं ना समाधि के ऊपर, तो उनके ऊपर इतनी श्रद्धा होती है, मैं समझती हूँ भगवान से ज्यादा श्रद्धा उनके ऊपर होती है। और इतना जब भी घर में भी नाम लेंगे ना, और उस कब्र के जो वहां पर जो मजार के अंदर जो होते हैं ना समाधि जिसकी होती है, उसका नाम लूंगी, बोले इसकी वजह से हमें जो कोई खुशी भी मिलती है तो भी बोलते हैं इसकी वजह से मिली हुई है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अंधकार है, ये अज्ञानता है, बेवकूफी है, वे प्रेतों की पूजा करते। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी, अब वो कुछ भी है, वो भगवान नहीं है, ये डेफिनेटली सबको पता है, वो भगवान तो नहीं होगा, तभी तो उसकी कब्र है। अगर भगवान होता तो उसकी कब्र नहीं होती। अगर आप उसको शुद्ध आत्मा मानते हो तो उसको प्रणाम कर सकते हो कि ठीक है भाई, आप शुद्ध आत्मा है, आप भगवान के भक्त थे बहुत, मुझे भी आशीर्वाद दो कि मैं भगवान की भक्ति कर सकूं। लेकिन उनकी पूजा कैसे करी जा सकती है, मुझे इतनी हैरत होती है। आज के समाज में हमारे लोग जो एजुकेटेड हैं और समझते हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जो अटेंड करते क्लासेस, और वो भी ऐसे मजारों में जाकर और ना प्रार्थनाएं करते हैं कि भाई ये भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वालों वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तमोगुणी व्यक्तियों के विषय में बता रहे हैं कि ये और भी शायद कोई तरीके होते हैं मैथुन सेवा के, पूजा के, इनके विषय में मुझे नहीं खबर। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये सब तमोगुणी है, और इसी प्रकार भारत के दूसरे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको खबर पड़ती है कि किसी जंगल में किसी वृक्ष पर अगर कोई भूत रहता है तो उस वृक्ष की पूजा करना शुरू कर देते हैं, उसे बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भक्ति नहीं है, ये पूजा नहीं है जी, ये शुद्ध सात्विक में जो भगवान की भक्ति होती है। और भक्ति का क्या मतलब है, भक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूप, आपको भक्ति का क्या मतलब होता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावर्तम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की जाती है वही भक्ति है। समझ जाओ ये बात कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई पूजा के योग्य नहीं है। आदर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पूजा के योग्य केवल एक ही है और वो है भगवान श्री कृष्ण। और इस बात को मैंने सारे लेक्चर्स में क्लियर किया है कि क्यों भगवान श्री कृष्ण पूजा के योग्य हैं, कि भगवान कृष्ण ही भगवान क्यों है, हर एक चीज को डिटेल से बताया है। इसके बावजूद भी अगर कोई किसी और की पूजा करता है तो वो या तो सत्वगुणी है, रजोगुणी है, या तमोगुणी है, और अगर कोई भी गुणी है तो डेफिनेटली बंधेगा, उसकी मुक्ति संभव नहीं है जब तक वो सारे कर्मों का परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करता है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है, शुद्ध सात्विक जो होते हैं उनके विषय में श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम में 4.3.23 में कहा गया है, और बहुत बहुत सुंदर शब्द हैं, वेदव्यास जी कहते हैं चैप्टर कैंटो 4 चैप्टर नंबर 3 टेक्स्ट नंबर 23 कहा गया है सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। सत्वम विशुद्धम, विशुद्ध का वर्ड लिखा हुआ यहाँ पर कि सत्वगुणी नहीं होते हैं वो, सत्वगुणी तो देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन सत्वम विशुद्धम और वासुदेव शब्दितम, वासुदेव सीधा सीधा भगवान श्री कृष्ण का नाम है, और भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी जो पूजा करते हैं सत्वम विशुद्धम, वो विशुद्ध सत्व में होते हैं, वो कभी नहीं बनते, उनकी मुक्ति होती है। और श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जब व्यक्ति सत्वगुणी यानी शुद्ध सत्वगुणी होता है तो ही वो वसुदेव भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकता है। तात्पर्य ये है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त होते हैं वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं, यानी कि जिनके ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सारे गुण खत्म हो जाते हैं, जो मादी प्रकृति से बाहर निकल आते हैं और शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं, सिर्फ वही भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। इसीलिए हमें इन गुणों का त्याग करना पड़ेगा। हम किसी भी गुण में रहकर कार्य करेंगे हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते। और यदि हमें अपना अपनी आत्मा का अपने जीवन का सार्थक करना है और उसको कल्याण करना है अपना, यदि इस बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें बचना है और सारी आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक इन सारे कलेशों से बचना है, तो उसका एक ही उपाय है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, और वो सारे गुणों से ऊपर उठकर की जा सकती है। वरना तो सत्वगुण में रहकर देवताओं की पूजा करेंगे, रजोगुण में रहकर राक्षसों की पूजा करेंगे, और तमोगुण में रहकर कब्रों और मजारों के पीछे भागते रहेंगे, वो कभी मुक्त नहीं कर सकते हमें। हो सकता है उनके अंदर इतना पावर हो कि वो आपकी कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी कर सके, लेकिन वो ख्वाहिश आपको बांधने वाली है। निर्विशेष वाली सत्वगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। निर्विशेष वाली जो निराकार वादी होते वो कृष्ण भगवान जी बोलते हैं उस पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं। निराकार जो होते हैं ना, निराकार जिसका कोई रूप नहीं होता उसकी पूजा कर रहे हैं। वो भी सत्वगुणी में होते हैं, शुद्ध सत्व में, केवल आप कृष्ण के, कृष्ण को मानते हो, कृष्ण के रूप गुण लीलाओं सब चीजों को मानते हो, कृष्ण के नाम को मानते हो, और कृष्ण से रिलेटेड जो है वो शुद्ध सत्व है। और अगर कृष्ण को छोड़कर यानी कि कृष्ण के रूप गुण लीलाओं को नहीं मानते, निराकार को भी मानते, तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि वो सत्वगुण है जो सिद्धांतिक विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार हैं, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास ना करके कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। यानी कि वो कृष्ण को तो नहीं मानते, वो ये बात को नहीं मानते कि विष्णु भगवान श्री कृष्ण के अंश है, वो भागवतम को नहीं मानते। एक बार मुझे एक निराकारवादी से मैंने पूछा था, वो गीता को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और गीता के विषय में बहुत अच्छा, मतलब यूं समझो कि गीता उनको पूरी रटी हुई थी। तो मैंने कहा कि गीता के बाद है ना भागवतम की बारी आती है, अब आपको गीता समझ में आ गई ना, भागवतम पढ़ो। तो बोला भागवतम मेरे पल्ले नहीं पड़ता, ये भागवतम जो है ना वो मुझे लगता है गीता से रिलेटेड, मतलब भागवतम में सिर्फ कृष्ण की लीलाएं, ये किया कृष्ण ने, ये किया, तो मुझे पढ़ के ना उसमें अच्छा नहीं लगता, मुझे आनंद नहीं आता, मुझे लगता ही नहीं ये भगवान हो सकता है। यानी कि उनकी भागवतम में श्रद्धा नहीं होती है, इसीलिए वो निराकारवादी होते हैं। और वो क्या सोचते हैं, क्योंकि भागवतम पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है भगवान को मानना पड़ेगा, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि भगवान में उनका विश्वास नहीं होता है, तो फिर वो विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष जानते, कि वो विष्णु जो है वो लेटे हुए हैं और वो निराकार ब्रह्म का दूसरा स्वरूप है, उसकी पूजा वूजा नहीं करनी पड़ती है, उसने कोई कार्य वार्य नहीं किया, संसार में जन्म नहीं लिया, इसलिए वो बचना चाहते भगवान की भक्ति करने से, इसलिए भगवान को नहीं मानते। एक दफा श्री प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि निराकारवादी कृष्ण को क्यों नहीं मानते, मतलब वो इतना ज्ञानी भी होते हैं वो कृष्ण को क्यों नहीं मानते। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते उनको है ना भगवान की भक्ति करना बहुत मुश्किल लगती है, सुबह मंगला आरती करो, फिर भगवान को भोग लगाओ, फिर भगवान की ड्रेसिंग करो, फिर आरती करो, इसी ये दासित्व उनको अच्छा नहीं लगता। वो बोलते कि भगवान का दासित्व नहीं चाहिए हम लोगों को, क्या करना है, भगवान के अंदर ही खो जाना है। तो ये सेवा भाव उनके अंदर नहीं होता है, वो अपने स्वरूप को नहीं समझे हैं। जी मेरे स्वरूप है कृष्ण अनित्य दास, वो मानते हैं कि निराकार का ध्यान लगाएं, लेकिन हम उनकी सेवा नहीं करें, इसलिए वो भगवान को नहीं मानते हैं। तो फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि इसी प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण की निराकार रूप है। वो उनका अपना विचार है, वो ऐसा सोचते होंगे कि ब्रह्मा जी वो रजोगुण का निराकार, अतः वे कभी कभी पांच देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग कर देते हैं। एटलीस्ट वो सब पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं और निराकार ज्योति में लीन होने की अपनी इस तीव्र जो होती ना ये लालसा है उनकी। श्रील प्रभुपाद जी तो इसको भी इंद्रिय तृप्ति कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हमें इतना सुकून मिले कि हमें कुछ ना करना पड़े और उसमें जाकर लीन हो जाए निराकार। ये अंतिम स्टेज है इंद्रिय तृप्ति की। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो क्या करते हैं, एटलीस्ट वो सब कुछ का त्याग कर लेते हैं और सिर्फ निराकार की पूजा करते हैं, इसलिए अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को परित्याग कर देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है, अब यहाँ पर निष्कर्ष निकालते हैं, मॉरल क्या निकालते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। यानी कि अगर आप चाहते हो, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी व्यक्ति जो है वो राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं, तो अगर आप इन प्रकृति के गुणों से ऊपर उठना चाहते हो, आप चाहते हो कि अब मुझे मजीद ये अपने आप को गुणों में नहीं फंसाना है, थोड़ा सा अक्लमंद बनना चाहिए, 70वें अध्याय पर पहुंच गए हैं, तो ये तो सोचना चाहिए कि गुणों के अंदर किसी भी ये गुण फंसाएंगे, ये गुण नहीं छोड़ेंगे, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाएंगे, तो इनसे ऊपर उठना है, थोड़ी सी तो अक्ल भी यूज करनी है ना। तो फिर इस निश्चल प्रभुपाद जी बोलते हैं यदि आप प्रकृति के इन विभिन्न गुणों से ऊपर उठना चाहते हो तो दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से, जिन्होंने इस शुद्ध सात्विक गुण को विकसित कर लिया है, जो भगवान के भक्त हैं, जो श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, उनका यदि आप संग करेंगे तो अपने इन गुणों को शुद्ध कर सकते हैं और कृष्ण की प्रेमामय भक्ति आप अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, जो कि जीवन का परम लक्ष्य है। ये मेरी बात नहीं है, शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 7, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च तद हेतुकम। वासुदेव भगवती, केवल भगवान वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही भक्ति योग प्रयोजता, भक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल भक्ति सिर्फ वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की ही करनी चाहिए, खाली भक्ति ही करनी चाहिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई ज्ञान और वैराग्य कैसे आएंगे, तो यहाँ से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञान वैराग्यम ज्ञानम च तद हेतुकम, ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के पीछे पीछे घूमते हैं। भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य की माता है। आपको पता होगा भागवतम में कथा आती है कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के सुपुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य की ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ही सर्वोच्च साधन है। और भक्ति कैसे की जाती है, दो तरीके श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम जले संचनम, बस ये दो काम करने हैं आपको, श्रवण और कीर्तन, श्रवण और कीर्तन, श्रवण और कीर्तन, बाकी सारा का सारा काम वो जो नाम आप जप कर रहे हो ना वही करेगा। श्रवण करना है आपको ताकि भगवान के कीर्तन के अंदर मन लगे, और कीर्तन करना है भगवान के नाम का जप करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी सारा काम वही करेंगे। जो जो नाम है ना उसके अंदर पूरा पावर है, वो सब कुछ दे देंगे आपको, जो ज्ञान चाहिए जो वैराग्य चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 10.10 में, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते, जो कंटिन्यूअस मेरे नाम का भजन करते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान कर देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ जाते हैं। तो फिर ऐसी बुद्धि यदि सिर्फ नाम जप करने से ही प्राप्त हो रही है तो दूसरे साधन करने की क्या आवश्यकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।